और इतनी छोटी उम्र में इसके कितने सुंदर सुंदर ये गुण हैं। उन्होंने उस समय प्रतिज्ञा की थोड़ी सी जब बड़ी हो जाएगी और विवाह योग्य तो मैं इसका विवाह उसी व्यक्ति से करूंगा जो इस धनुष को उठा ले और इसका प्रत्यंचा ऊपर से गिरते उस पर लगा दे और उसमें बाण चलाने लायक कर दे। उसके बाद वो बात तो खत्म हो गई। अब धीरे धीरे अभी यह 15-16 वर्ष की जब हुई, 16 वर्ष की, तो धनुष रख दिया गया था जैसे इसी से ही शादी होगी, जो कि इसको उठा करके इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, डोरी चढ़ा देगा। बड़े बड़े राजकुमार आए भारतवर्ष के, किसी की बात बस की बात नहीं। बाणासुर आया, उसकी 1000 भुजाएं, वो आया उसकी भी थी।
कृष्ण के समय वाला बाणासुर जिसकी कृष्ण से युद्ध हुआ था सबसे तब तक
ये लोग साथ आकर के उठाया, वो भी नहीं उठा। रावण आया, उन्होंने उसको मना किया, तुम मत उठाओ, तुमसे उठेगा नहीं, तुम्हारी बदनामी होगी। वो माना नहीं, धनुष को उठाने लगा तो थोड़ा सा वो हिल तो गया, किंतु उसके ऊपर में ऐसा गिरा जो उसको उठा नहीं सका, फिर भी लाने लगा। बड़ी मुश्किल से सब बहुत से लोग आकर के थोड़ा सा टसमस किया तो उसकी प्राण बचा, वो भी भाग गया। देवता लोग आए, देवता लोग भी नहीं उठाए। अंत में राम लक्ष्मण जी भक्त के साथ में जब आए तो उसको उठाया, उठाने के बाद में उनके साथ में शादी हुई। उठाते समय में उठा करके प्रत्यंचा जब डोरी चढ़ाने लगे तो ऐसा किया या ऐसे नवाया, उस समय में उधर टूट गया, पुराना था, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ा, अपने आप टूट गया। इसके बाद की कहानी आप लोग जानते हैं, सीता जी ने उनके गले में माला दी, विवाह। वो खड़ा में वो कैसे पैदा हुई उसके लिए बतला रहे हैं। रावण बड़ा प्रतापी राजा था, रामचंद्र जी से 1000 वर्ष पहले उसका जन्म था। इनके जन्म इनके कुल में मानधाता थे, इनके बहुत पूर्व पुरुष थे, तो उसमें भी रावण था, बहुत वर्षों की इसकी आयु। तो ये रावण सब पृथ्वी पर जबकि सबको जीत लिया है, कहीं कहीं पर पराजित भी हुआ है, किंतु गुंडा टाइप का था, हारने पर भी वो हारता नहीं था, गुंडा टाइप का। आजकल गुंडे होते हैं ना, छल बल कल से जैसे कि किसी को परास्त करते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे। तो वो सब जगह टैक्स लेता था। दंडकारण्य में बहुत से साधु संत थे, महर्षि थे, जो कि भगवान का भजन करते थे, ध्यानस्थ हो जाते थे, भजन करते थे। उन्होंने चारों तरफ से टैक्स मंगाया, यहाँ पर भी अपने सैनिकों को भेजा, पदाधिकारियों को भेजा, वहाँ से भी ऋषियों से भी टैक्स लो। ऋषि बोले भाई हम लोग टैक्स क्या दें, हमारे पास तो कुछ है नहीं, फल मूल खाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। हमारे राज्य में भजन पर भी टैक्स है, जैसे आजकल टैक्स है ना सभी पर, जो भगवत भजन करें ना करें, चोर साधु बदमाश जितने हैं, अच्छे भी हैं सज्जन भी हैं, सब एक कैटेगरी में, उनके लिए साधु संतों का कोई विशेष सम्मान। उन्होंने कहा जैसे आप लोगों को भी टैक्स, जो ध्यान लगाते हैं हमारे राज्य में तो इस पर भी टैक्स, जैसे हिंदुओं पर जजिया टैक्स किसने लगाया, अकबर ने लगाया था जजिया टैक्स, इसके बाद में फिर किसी तरह से हटाया। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, विधर्मी लोग धर्म पर भी अंकुश लगाते हैं। इस देश में धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्म कोई इस पर ये नहीं या कोई धर्म करे, नहीं तो करो मत करो, नहीं करो उस पर बैन है। तो इस तरह से उस पर लगाता था, बैन लगा रहा था जी, धर्म करो मत कोई करो, इसलिए टैक्स मांगा। मुझे ठीक है, हम लोग तो कुछ टैक्स देने लायक नहीं है, तो हम यही टैक्स देते हैं अपने अपने जंघों को चीर करके, उसमें से जो रक्त निकला सब लोगों ने मिल करके उसको थक दिया, ले जाओ। जब ले जाने लगे तो भाई से जा करके कह देना, ये रक्त भरा जो घड़ा है इसी से तुम्हारे कुल का सबका ध्वंस हो जाएगा, सब मरोगे, विनाश होगा। बड़े डर गए। इसके बाद लेकर के गए वहां, रावण कहीं बाहर गया था या बाहर नहीं होने पर भी मंदोदरी उनकी पत्नी थी, मंदोदरी की आंखों में दिया डर कर, रावण को नहीं दिया। और बोले जैसे ये रक्त देते समय में उन लोगों ने कहा कि इसी घड़े से ही, रक्त भरे घड़े से ही उसका विनाश होगा। उन्होंने देखा कि यहाँ पर नहीं रखना चाहिए, इसको ऐसी जगह में भेजना चाहिए जो कभी इसको कोई निकाल ना सके, ले जा करके हिमालय के प्रांत में और उसको लेकर के गाड़ दो। तो लंका कहाँ, भारतवर्ष के दक्षिण में ना, वहां से लेकर के एकदम हिमालय की तराई में
उत्तर दिशा में
लेकर के जमीन के नीचे उसको गड़वा दिया। किंतु मंदोदरी तो खुद आई नहीं, रावण तो आया नहीं, उनके नौकर जाकर आए, तो उनको गाड़ना चाहिए था 10-20 हाथ नीचे, तो उन्होंने गाड़ दिया कहाँ,
एक हाथ नीचे,
थोड़ा सा एक इतना इतना नीचे गाड़। इसलिए उसके सीता में फल में लग गया और उसे निकल गया, उससे सीता जी निकली, यही रावण के ध्वंस का कारण बनी। रावण उनको हरण करके ले गया और इसी से उनका विनाश हुआ। सीता जी की बहुत सी विशेषताएं हैं। अभी अपने पिता के घर से आई, घर से कभी पैर नहीं रखा, सूरज ने उनका कभी मुख नहीं देखा, असुर जम पश्या नारी, कभी पैर पृथ्वी पर नहीं चले, इतनी सुकोमल हैं। आज रामचंद्र जी के साथ में जाने के लिए तैयार हुए। राम ने बहुत तरह समझाया, कौशल्या जी ने समझाया, महाराज दशरथ ने खुद समझाया, किसी की बात नहीं मानी। मैं रामचंद्र जी के साथ में वन में अपने पति के साथ में मैं सुखपूर्वक रहूंगी, जितनी भी कठिनाई होगी, अरे वहां पर बहुत से सर्प हैं काट देंगे, बिरह सबसे बढ़कर के वो नहीं है, देख लेंगे, पानी कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, राक्षस साल तरफ में घूमते हैं न जाने क्या कर देंगे, खा जाएंगे कोई बात नहीं, अब तुम्हारा अपहरण हो जाएगा कोई बात नहीं, सब कठिनाइयों को सुन करके भी वो तैयार हो गए। पति की सेवा हो तो ऐसे, और पति भी हो तो राम के समान, दोनों ऐसे, गुरु हो तो गुरु और शिष्य भी हो तो ऐसा ही शिष्य योग्य होना चाहिए। रामचंद्र जी बाध्य हुए ले जाने के लिए, जब वन में गए तो बहुत तरह के कष्ट आए, बहुत तरह के, सबसे पहला कष्ट तो ये आया, विराट नाम का एक राक्षस रास्ता रोक करके खड़ा हो गया और सीता को ऐसे पकड़ करके लेकर के चल पड़ा, ये लोग विवश है कुछ कर न सके, अंत में राम लक्ष्मण जी ने बाणों की वर्षा उस पर की, उससे कुछ नहीं हुआ, सब बाणों को खा जाता है, फिर सीता जी को रख करके दोनों को दोनों हाथों से पकड़ करके एकदम अपने कंधे पर बैठा करके चल पड़ा। अब सीता जी बिलबिलाने लगी, अब क्या होगा। इसके बाद राम और चंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने कुठार से उसके ये दोनों को काट करके गिरा करके मिट्टी में गड्ढा खोद करके उसको
पबंद,
इसी तरह से कितने असुरों को राक्षसों को मारा, अंत में रावण किस प्रकार से उनको अपहरण करके ले गया ये भी जानते हैं। सीता जी से और लक्ष्मण जी से कुछ वार्तालाप हुआ, जिसमें सीता जी ने उनको बहुत से लांछन लगाए और गाली गलौज की, तुम राम के पास में नहीं जाना चाहता है, तुमको उन्होंने बुलाया, राम हा लक्ष्मण कहा तुम गए, तुम चाहते जी हमको तुम ग्रहण करेगा, हम तुम्हारे साथ में घर नहीं करेंगी, तू भरत का भेदिया है, जासूस है, अब भरत का पक्ष का है, तुम इसलिए राम को मरवाना चाहता है जो राम कभी नहीं लौटे, इसलिए तुम उनकी सहायता करने नहीं जा सकते। बहुत गंदी गंदी बातें कही लक्ष्मण जी ने, एक सर्प खींच दिया, इसके अंदर मीं रहना बाहर में बच जाना, मैं नहीं जाना चाहता, मैं जानता हूं कि राम पर कोई भी संकट नहीं आ सकता, किंतु आप मान नहीं रही हैं और लांछन लगा रहे हैं, अब जो होना है सो वही होगा, किंतु मेरी विशेष प्रार्थना है कि इसके बाहर में मत जाना। सीता जी वहां पर अंदर में रही, इतने में कोई एक सन्यासी त्रिदंडी,
त्रिदंडी
एकदम हमारे जैसा तिलक, गले में कंठी और हम लोगों का जैसा त्रिदंड लेकर के वहाँ पर उपस्थित हुआ, कमंडलू लेकर के और दंड, लाल कपड़े ऐसे। सीता जी ने कहा जी सच कुछ में ये त्रिदंडी सन्यासी भक्त है। उसने कहा भिक्षा में दे ही, वो भिक्षा लेकर के भीतर ही भीतर रहे, बाहर नहीं आए, बर्तन को बाहर दे दिया, नहीं लिया। मैं बंदी भी भिक्षा नहीं लेता, भिक्षा देना है तो बाहर आओ, मैं भीतर नहीं, मैं बाहर बाहर नहीं जा सकता, तो मैं भिक्षा नहीं, किंतु मैं अभी संपात करता हूँ तेरा पति मारा जाए और उस पर संकट आए। एकदम डर गई राम, उसके भीतर आने की चेष्टा की, जमी खड़ंग पहन करके ऊपर में आ रहा, खड़ंग लकड़ी है ना, बिजली के तार पर यदि लकड़ी पड़ती है तो कोई गड़बड़ी नहीं, किंतु तभी आग निकल गई, बस पीछे हट जाता है। अंत में अभी संपात के डर से सीता जी बाहर आई, उनको पकड़ कर राम रावण का युद्ध हुआ, सीता के कारण रावण का वंश एकदम सब समाप्त, 1,00,000 पुत्र 1,25,000 नाती सभी का ध्वंस हुआ। असल में ये सीता जी थी कि कौन थी, रामचंद्र जी ने युद्ध के पहले ही, सीता अपहरण के पहले ही सीता जी को अग्नि को सौंप दिया था दंडकारण्य में, अभी वो स्थान है, जमीन से नीचे है, वहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ के नीचे कंदरा में एक भीतर गुफा में वो स्थान है जहाँ अग्नि को सौंपा था। असल सीता को वहाँ रख करके नकल सीता में इसे माया सीता बना करके और रावण के युद्ध तक उन्होंने इसी के साथ में मिला। रामचंद्र जी ने असल सीता को पाने के लिए कहा जी आपको मैं ग्रहण नहीं करूंगा, सब लोग देख रहे हैं जी रामचंद्र जी ऐसा कर रहे हैं, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। सीता जी वो माया की सीता जी रोने लग गई असल सीता के समान, बोली लक्ष्मण जी से यदि मुझे ये ग्रहण नहीं करते मैं जल मरूंगी, तुम काठ की चिता बनाओ लकड़ी। लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी के तरफ में देखा, बड़े गंभीर थे, पर जैसे सीता जी तो पवित्र हैं, इनको आप ग्रहण नहीं कर सकते, अभी डरते हैं समाज से, कुछ नहीं कहा। उन्होंने चिता लगाई और जलती हुई चिता में सीता जी नहीं, यदि राम के अतिरिक्त हमने कभी कभी किसी का स्पर्श नहीं किया है मेरा मन तो याद बर्फ के समान सुस्तल है, बस आग एकदम शांत हो गई। उसमें सुंदर लाल पुरुष एक निकला, बोला जी मैं अग्नि देवता हूँ, मैं साक्षी देकर के कहता हूँ मैं सर्वत्र रहता हूँ, ये पति पड़ता है आप इसे। इतने सब देवता लोग आए, महाराज दशरथ आए और साक्षी दीप और उनको हुआ क्या, अग्नि में माया सीता चली गई और असल जो सीता थी अग्नि देव ने प्रकट करके राम को सौंपा। इस रहस्य को किसी ने जाना नहीं, वो एक रहस्यमय कथा रह गई। पश्चात में जबकि लौटे 11,000 वर्ष तक रामचंद्र जी ने राज्य किए, जब 11,000 पूरा होने वाला था, 8-10 वर्ष जब कम था, उसमें सीता जी को एक धोबी के कहने से वनवास दिया। धोबी की पत्नी कहीं शाम को गई थी अपने परिवार वालों के साथ में, कहीं किसी के घर पर आई तो रात हो गई। उस धोबी ने कहा जैसे मैं राम नहीं हूं, क्या समझते हैं राम जैसा, मैं राम नहीं, अभी घर से निकलो, 1,00,000 मारा उसको घर से बाहर। रामचंद्र जी का दूत वहां पर ये सब वेश बदल करके ये सब राज्य में घूमते थे, उन्होंने सुना ये ऐसा, एक जगह देखा दूसरी जगह भी कुछ ऐसे ही वार्तालाप चल रहा है, कुछ अंगुली उठ रही। रामचंद्र जी स्वर जी अच्छी बात नहीं, उन्होंने लक्ष्मण जी के हाथ में सीता जी को वनवास दे दिया। कब के लिए, आजीवन, जैसे आजीवन कारावास होता है आजीवन उनको वास वनवास दे दिया। सीता जी ने उसका प्रतिवाद नहीं किया, उनके गर्भ में 2 बच्चे थे, बिल्कुल कोई प्रतिवाद नहीं, बस रोती रोती रह गई बेचारी, बच्चों का पालन पोषण किया और उनके बच्चे लवकुश को उन्होंने शिक्षा दी, रामायण पढ़ाया वाल्मीकि, वाल्मीकि जैसे ऋषि थे, बड़े प्रतिभाशाली शक्ति रखने वाले, इसलिए सीता को रख लिया अपनी बेटी के रूप में। दूसरा कोई शक्तिशाली वैसा ऋषि नहीं होता तो नहीं रख पाता। क्यों? रामचंद्र जी ने जिसको अपने घर से निकाल दिया उसको तुमने रखा, इसलिए रामचंद्र जी जैसा कोई शक्तिशाली पुरुष ही सीता जी की रक्षा कर सकता था, उनको अपने घर में रख सकता, नहीं तो रामचंद्र जी के कोप का भाजन बनेगा। वाल्मीकि जी कम नहीं थे, उन्हें राम का भजन किया था इसलिए उनकी शक्ति भी उनमें थी। आज पुत्री हमारे यहाँ रहो, निश्चिंत रूप में तुम्हारा पालन पोषण मैं करूंगा। सीता जी उनके पुत्री के समान उनके आश्रम में रही। बल होता उस समय आश्रमों में महिलाएं भी रहती थी जो भजन करती थी, अनुसुईया जी जैसे रहती थी, और सब महिलाएं थी, विदुषी महिलाएं बड़ी विद्वान होती थी, लोग भी ऐसे आश्रमों में रहा करते। कुछ दिनों के बाद में उनके बच्चे हुए, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और वो रामायण का गान करने के लिए इधर उधर जाते थे। उसी समय रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे। वाल्मीकि से उन्होंने, वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा, गुरुजी हमको यज्ञ करना है, तुम नहीं यज्ञ कर सकते। क्यों? तुम अयोग्य हो। क्यों अयोग्य हूँ? तुम पत्नी को निकाल करके घर से और तुम यज्ञ करना चाहता है, तुम्हारा अधिकार नहीं है। सीता जी को बुला लो, यज्ञ होगा, सीता जी के साथ में बैठना पड़ेगा। उन्होंने कहा सीता जी को तो बुला नहीं सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, सीधी बात नहीं कहते, हमको तो यज्ञ करना ही है, आप कोई दूसरा उपाय बतलाइए। अच्छा तो बहुत उपाय है, एक शादी और कर लो। ऐसी शादी तो मैं कर नहीं सकता सीता के अतिरिक्त, बस एक पत्नी नहीं, मैं नहीं कर सकता, तो फिर यज्ञ भी नहीं होगा। फिर भी गुरु जी यज्ञ होगा, आप कोई उपाय बतलाइए। अच्छा सीता जी की मूर्ति बनाओ, बाएं में रख करके सीता जी के साथ में, उस सीते के साथ में तुम यज्ञ कर सकते। हाँ ये स्वीकार है तो ठीक है करो। तो सोने की मूर्ति सीता जी जैसी अभिकल बना, यदि रामचंद्र बनवा रहे हों तो सीता की मूर्ति कैसे होगी? ठीक जैसे सीता जी है, ठीक उसी प्रकार से, और उसमें प्राण का संचार किया जाता है, प्रतिष्ठा होती है रामचंद्र जी वशिष्ठ के द्वारा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा है, सचमुच में वो सीता जी हो जाती है। अब यज्ञ समाप्त होने पर है, लौ कुश वहां पर उस सभा में आए हैं गान करने के लिए, बहुत ही सुंदर खूबसूरत 8-9 वर्ष के बच्चे हैं करीब, दोनों एक ही साथ माँ के गर्भ से निकले, 8 या 9 वर्ष या अधिक से अधिक 12 वर्ष के बच्चे होंगे। अत्यंत सुरीला सुकंठ मधुर गायन, छंद के साथ में, स्वर के साथ में, लय के साथ में, वीणा के ऊपर में गा रहे, सबका चित्त मुग्ध कर देते, सुंदर भी वैसे, सुरीले भी वैसे। रामचंद्र जी उनको बुलवाया हमारी सभा में गान, सुंदर से लेकर के थोड़ा सा एक दो सर्ग उन्होंने गाया। रामचंद्र जी की आंखों से झरझर करके आंसू गिरने लगे, जितने यहाँ पर लोग थे मानो वो लीला एक मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गई सभी लोगों के आंखों में, नेत्रों में। जब उनका गायन समाप्त हुआ, रामचंद्र जी ने कहा इस बेटे का, बच्चे का परिचय तो लो, इसके बाप का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है। लक्ष्मण जी गए, बड़े आदर के साथ में, स्नेह के साथ में पूछा, बेटे तुम्हारे बाप का नाम क्या है, कहाँ रहते हो? भैया आप इतने शास्त्रज्ञ और धार्मिक होकर के हमसे पूछ रहे हैं, आपका यह प्रश्न अनुचित है। हम लोग ब्रह्मचारी हैं, हमारे गुरु का नाम पूछिए, हमारा परिचय गुरु से, पिता से अभी कोई परिचय नहीं हमारा, इसलिए उनका नाम पूछिए। हमारे गुरु जी का नाम वाल्मीकि, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया। लौट करके गए, रामचंद्र जी से कहा, रामचंद्र जी ने कौशल्या जी का रही राम को, बेटा तुम्हारा यदि बेटा होता ना, ये ठीक तुम्हारी जैसा इसका रूप है, और आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण कहते बात मैया ठीक ठीक कह रही है, ये बेटे तो इन्हीं के लग रहे हैं,
ये बड़े हैं छोटे,
ये बड़े अब है और ये बच्चे जो हैं ये छोटे हैं, किंतु दोनों का रूप एक समान, श्यामला रंग, एक ही जैसा मुंह का कटिंग, फेस, बोली भी वैसे मधुर, गुण भी एक समान है, हमको तो ऐसा बात इन्हीं के पुत्र हैं, तो प्रमाण नहीं। इसके बाद में रामचंद्र जैसा भी हो, कोई भी हो, इसको सोने के थाल में भर करके असाखियाँ और नदी जाए। लक्ष्मण जी सोने के थाल में बड़े से रत्नों को भर करके ले आए देने के लिए। उन्होंने कहा कि हमें मुझे इसकी क्या जरूरत है, हम ऋषियों के आश्रम रहते हैं, फल फूल खाते हैं, पहनने के लिए हमें मिल जाता है बलकल वस्त्र, माने केले के छिलके का वो बनता है ना, मोटा कपड़ा, बस यही तन ढकने के लिए। पानी पीने के लिए अंजलि है, गंगा से पानी लेकर के पी लेते हैं, बर्तन की आवश्यकता, इसलिए हमें इन सब से क्या प्रयोजन है। ये तो आप राजाओं के लिए जरूरत है, आप लोग रखिए, नहीं लिया। बड़े प्रभावित लोग हुए। उस सुक्ता जी कौन है, एक व्यक्ति बतला सकता है, कौन? वाल्मीकि जी बतला सकता है, उस समय सभा में नहीं थे। दूत भेजा गया और इधर ये बच्चे लौट करके जबकि अपने आश्रम में गए, तो आज विलम्ब हो गया था। मैया ने कहा कि बेटे आज बड़ी देर लगाई तुम, बहुत देर से प्रतीक्षा कर। बच्चे उस मैया के गोद में दोनों बैठ गए, एक बाएं और दाहिने, और मैया ने दोनों को अपने अंक में भर लिया, चुंबन करने लगी, स्नेह करने लगी। बेटे बेटे कैसे देर हो गए, आज हम लोग एक सभा में गए, बड़ा संपत्तिशाली प्रभावशाली राजा, उसका नाम राम, उसकी सभा में बड़े स्नेह से बुलाया, और हमने जब दान करना आरम्भ किया तो सभी लोग रोने लगे। मैया एक बड़ी विचित्र बात देखा, क्या बेटा? उस सभा में देखा कोई यज्ञस्थली थी, और यज्ञस्थली में एक सोने की मूर्ति थी, सोने की मूर्ति में और तुम में कोई अंतर ही नहीं देखता, ठीक, मानो तुम ही वहां पर बैठी है, वो बोलती नहीं थी और तुम बोल रहे, बस इतना ही। मैं देख करके हैरान हुई, मेरी मैया यहां पर आकर के बैठ गई या क्या हुआ। ये सुन करके सीता जी एकदम रोने लगी। उन कुछ समय में उन्होंने भीतर भीतर अंतर में सोचा, राजा ने रानी का त्याग किया है, राम ने सीता का प्रत्याग नहीं किया, जब मेरी मूर्ति को वहां पर रखे हैं तो मेरे प्रति उनका स्नेह है, नहीं तो रख नहीं सकते, दूसरे किसी पत्नी को उन्होंने ग्रहण नहीं किया और हमारी मूर्ति के साथ रख करके जो किया, एकदम आंसू भर गए। ये उन्होंने कहा मैया तू रो क्यों रही, अब कैसे बताएं कि मैया किस लिए रो रही, एकदम चुप हो गई। और इधर मैं वाल्मीकि गए राम के यहाँ, उन्होंने कहा सीता जरूर कहीं धर्म है आपके पास में है, तो हाँ है, उसको कहीं यहाँ पर ला सकते हैं, तो यदि आप आदेश करेंगे तो जरूर लाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि आप इनको लाएं। और भरी सभा में ये बतलाए मैं पति पिता, ठीक। दूसरे दिन सीता जी को बुलाया गया, लोग उसको उनके साथ में आए, सारी सभा एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। अरे ये तो सीता जी, कौशल्या जी उठी, मैं कहीं उठी, सब लोग उनका अभिवादन करने के लिए, राम ने इशारा कर दिया भाई चुपचाप बैठे रहो, देखो कोई अपने आसन से हिला नहीं। राम उठ करके सभा में खड़े हुए, बोले आप पधारिए, आप निष्कलंक है मैं जानता हूं, किंतु समाज ऐसा नहीं है, इसलिए आप दो एक प्रमाण ऐसा दीजिए कि आप पवित्र हैं, मैं आपको ग्रहण कर सकता हूं। तो आपको महाराज दशरथ के बातों को विश्वास नहीं, अग्नि के बातों को विश्वास नहीं, दिशाओं के बातों को विश्वास नहीं, ऋषि ब्रह्मर्षि के बातों पर विश्वास नहीं, और कुछ प्रमाण चाहिए तो दे सके तो अच्छा है, अच्छा तो मैं प्रमाण देती हूँ, हे पृथ्वी देवी आप मेरी मैया हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस समय में मुझको प्रमाण देना है, यदि मैंने तन मन वचन से किसी भी दूसरे व्यक्ति को राम के अतिरिक्त मैंने नहीं स्पर्श किया है, विवश अवस्था में किसी व्यक्ति ने हमारा शरीर स्पर्श कर दिया वो बात अलग रहे, किंतु जानबूझ करके नहीं किया है, मन ने स्पर्श नहीं किया है, मैंने इसका विरोध किया है, हे धात्री देवी मेरी मैया तुम जल्दी से प्रकट करके अपनी गोदी में ले लिया। तीन बार ऐसा कहा, साथ साथ में पृथ्वी फट गई, सुंदर सोने का सिंहासन आया, उसमें सीता जी को वो पृथ्वी देवी आई, वो भी एक लक्ष्मी जी, और सीता जी को अपनी गोदी में ले लिया, और एक सेकंड का मैंने पटाक्षेप हो गया, वो पृथ्वी राम जी दिख तल मला करके हाहाकार कर उठे, सभा हाहाकार कर उठी, राम ने कहा जैसे फल से पृथ्वी तो मेरी सास है, इसलिए मैं तुम्हारा आदर करता हूँ, तू जल्दी से मेरी पत्नी को दे और नहीं तो तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा अपने बाणों से, धूल में मिला दूंगा। वाल्मीकि ने कहा वृथा रोष मत कीजिए, इति श्री वाल्मीकि रामायणम ये हो रहा है। अब ये रामायण की समाप्ति है, सीता जी गई बैकुंठ में अयोध्या लोक में, अब आपको भी चलना है, इसलिए आप क्रोध मत कीजिए,
आपका रोल ये है,
आप लौकुश को राज्य दे करके, अपने भाइयों के बेटों को राज्य दे करके आप सभी लोग पधारिए। रामचंद्र के कहने से शांत हो गए, अयोध्या लौट गए और जितने पूर्वासी से सब लोगों को लेकर के सरजू के यहाँ पास गए। वहां पर गुप्तार घाट नाम का एक घाट है, बस वहीं जाकर के गंगा सरजू में डुबकी लगाई और सभी लोग चतुर्भुज होकर के उनके साथ चले। इति श्री सीता चरित्र, ये सीता जी का चरित्र आज इनका ये चरित्र। दूसरी बात, आज जाह्नवी देवी जी का जन्मदिन। जाह्नवी देवी कौन है? नित्यानंद प्रभु की शक्ति है, जैसे राम की शक्ति सीता जी हैं, कृष्ण की शक्ति राधा जी हैं, बलदेव जी की शक्ति रेवती जी हैं, ऐसे बलदेव प्रभु जी हैं नित्यानंद और ये रेवती जी ही ये जाह्नवी देवी। बंगाल में एक कालना है स्थान गंगा के तट पर, कालना है इधर पूर्व तरफ में और पश्चिम तरफ में शांतिपुर है, अद्वैताचार्य जी का घर, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। वहीं पर दो भाई रहते थे महाप्रभु के समसामयिक, गौरीदास पंडित जी और सूर्यदास सरखेल, ये दोनों भाई थे। गौरीदास जी परम भक्त थे और सूर्यदास सरखेल उनके छोटे भैया थे, भक्त थे किंतु कहीं मुसलमानों के कहीं राज्यसभा में अकाउंटिंग का कार्य करते थे, लिखना अकाउंट रखना, जो अकाउंट रखते हैं उनका नाम होता है सर थे। पूरी में भी बादशाह थे, वो प्रताप उनके भी लेखक थे सर, अकाउंट सब समय रहता है तो ये अकाउंट रखते थे, इसलिए उनका नाम हो गया सर थे। किंतु थे बड़े भक्त, इन्हीं की दो कन्याएं थी ये जाह्नवी और वसुधा। जाह्नवी जी बड़ी थी और वसुधा जी छोटी थी, ये वसुधा जी बड़ी थी ये याद नहीं। फिर जाह्नवी के गर्भ से कोई बच्चा नहीं हुआ, वसुधा जी जो छोटी थी उनके गर्भ से एक बच्चा हुआ, उसका नाम था वीरभद्र और एक लड़की थी, लड़की का नाम मुझे याद नहीं। तो ये जाह्नवी जी अपने जब विवाह नहीं हुआ था उस समय अपने पिता के निकट अधिक न रख करके वो रहती थी अपने जेठा के यहाँ, जेठा कहते हैं ना क्या कहते हैं, ताऊ जी के पास में रहती थी। ताऊ जी ऐसे भक्त थे
गौरीदास पंडित जी,
गंगा के किनारे घर है, कुटी है, विवाह शादी नहीं थी, छोटे भाई ने किया, परम भक्त हैं। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी को ऐसा आकर्षण किया कि महाप्रभु उनसे मिलने के लिए आते थे। एक बार नित्यानंद प्रभु जी अद्वैताचार्य जी शांतिपुर में आया और वहां से गंगा पार करके कालना में इनसे भेंट करने आए। इन्होंने बड़ा आदर किया, एक दिन रहे, दूसरे दिन जब जाने के लिए तैयार हुए तो जी प्रभु आज एक दिन और रह जाइए, और अपने हाथों से सुंदर रसोई साग दाल अन्न और कच्ची रसोई जो होती है सुंदर से सुंदर बनाते, विशेष करके महाप्रभु जी को साग बहुत पसंद था, वो भी बनेले ये पौधों का। एक दिन रहे, दो दिन, फिर जाने के लिए तैयार, प्रभु एक दिन और ठहर जाइए। ऐसे करते 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 उनको 15-20 दिन उनको रख लिया, जाने नहीं दे। तो उन्होंने कहा जी भाई आज तो मुझे जरूर जाना चाहिए, प्रभु आपके बिना तो मैं जी नहीं सकता। अच्छा तो ठीक है, इसकी व्यवस्था मैं करूँगा, अपनी प्रतिमूर्ति वहाँ से नवद्वीप जाकर के भेज दूंगा। तो नवद्वीप में गए और जिस नीम के पेड़ के नीचे जिनका जन्म हुआ था उसी पेड़ के नीम से दो मूर्तियाँ बनी लकड़ी की, और उन लकड़ी की मूर्तियों को, नीम के मूर्तियों को फेंक दिया गया। वहां जाकर के अब गौरीदास जी बहुत ही सुंदर देख करके बड़े प्रभावित हुए और उनकी पूजा करने लगे, उनसे कभी बातचीत भी करते। कभी नमक कम हो जाता तो कहते जरा नमक ले आना, तो कोई चीज कुछ हो जाता तो वो मूर्ति उनसे मांग करके खाते और बड़े प्यार से रहते। एक दिन फिर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी उनके घर में आए, अब तो ये और दो वो वहां पर उनको लिए भोग अर्पित होता है और यहाँ पर उनका मन जाता है कि ये लोग भी प्रसाद खाते। गुरु भी एक दो दिन हो गए, गौर नित्यानंद ने कहा जैसे अब तो बहुत दिन हो गए भाई, दो तीन दिन हो गया, अब हम लोग चलेंगे नौकरी के लिए मायापुर, प्रभु एक दिन और ठहर जाए। ऐसा फिर वैसा ही करने लगा, भाई एक बात करो उन दोनों को या तो रखो या दोनों हमको रखो। ये अच्छी बात है, ठीक है। तो जब ये लोग चल रहे चलते, नहीं आप प्रभु रहिए ये लोग जाए, और जब ये लोग रह जाते तो वो लोग चलने लगते, कहते प्रभु आप रहिए ये लोग जाए। इस तरह से दोनों को रोकने की चेष्टा करते। और ऐसी विचित्र बात हुई कि जब ये दोनों रहते नित्यानंद प्रभु गौर चंद्र, तो उनकी मूर्तियां वहां से चली जाती, और जब ये लोग रहते तो उस मंदिर में जाकर के मूर्ति बन जाते। फिर बातचीत वैसा नहीं, एकदम ठीक अभी कल मूर्ति बन जाती। फिर उनके लिए रोने लगते जी आप लोग आइए, फिर आते तो कभी वो आ जाते कभी ये, छोड़ते नहीं। इस तरह से गौरीदास पंडित की ये भक्ति देखिए कितने भक्तिमान। अब उनकी सेवा करने वाली कभी कभी गौरीदास जी उनकी सेवा में नियुक्त कर देते। बचपन से कैसी शिक्षा हुई, ये जब बड़ी हो गई तो नित्यानंद प्रभु उस घर में पधारे और इन लोगों ने निवेदन किया आप इससे शादी कीजिए। उनकी कौन सी लीला, क्योंकि वही रेवती जी ये बनी है, और एक थी रेवती और एक बारूनी, एक बारूनी एक रेवती, दो बलदेव जी की पत्नियां थी, वो दोनों वसुधा और जानवी। अनंग मंजरी तो कृष्ण के लीला थी, जानवी जी है अनंग मंजरी। इस तरह से उनकी शादी थी नित्यानंद प्रभु से दोनों की। होने के बाद में उनके साथ में गई, कुछ दिन रहने के बाद में वसुधा जी के पुत्र हुआ तिरुपत। वो जब बड़ा हुआ, कुछ बड़े हो गए, तो नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी अप्रकट हुए, फिर नित्यानंद हो गए और सब लोग धीरे धीरे उनके लीला के जितने परिकट थे वो सब लोग चले गए। अब जन्मा जी रह गई, वसुधा जी रह गई, इनका पुत्र ही रह गया। पुत्र करीब करीब 12 वर्ष 13 वर्ष 14 वर्ष का हो गया, 15-16 वर्ष का हो गया, किंतु अभी तक किसी से दीक्षा नहीं ली। नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है, उनके पुत्र ही है। लोगों ने परामर्श दिया जे तुम किसी से हरिनाम दीक्षा जरूर लो। जब महाप्रभु जी ने दीक्षा हरिनाम दिया है, नित्यानंद प्रभु जी ने भी लिया है, तुमको जरूर लेना चाहिए। किंतु वो कहते थे मैं नित्यानंद प्रभु जी का पुत्र हूँ, अब हमसे बड़ा कौन होगा, हम नहीं लेंगे। हम लेंगे उसी से जो नित्यानंद प्रभु के बराबरी का कोई भक्त हो, तब मैं लूंगा, ऐसा तत्वज्ञ हो, ऐसा प्रभावशाली हो। तो ऐसा कोई प्रभावशाली नहीं दिखता था। लोगों ने कहा जैसे तुम एक बात करो, अपनी जो मैया है ये जाह्नवी देवी, उनसे तुम दीक्षा मंत्र ले। मैं महिला से नहीं लूंगा, कोई भी महिला कैसी थी, ठीक है तुम उनको महिला समझता है देवी नहीं समझता। अरे वो अनंग मंजरी की अवतार है, वो रेवती जी की अवतार है, तुम नहीं समझता। कहा भाई जो कुछ भी हो मैं महिला से नहीं लूंगा, हमारी मैया है। एक दिन की बात है कि एक दिन वो अंदर महल में बाथरूम में गई। महिलाएं ऐसे होती हैं बंगाल की कि अपने कपड़ों को छोड़ करके कुछ साफी या गमछा होता है, एक गमछा ऊपर एक गमछा नीचे, दो गमछों का व्यवहार करती है। हम लोग भी दो गमछों का ही व्यवहार करते हैं। तो एक गमछा नीचे उन्होंने ले लिया, बाई चांस वो एक दूसरा गमछा मिला नहीं, उसी से अपना नित्य क्रिया किया और होने के बाद में वो कुएं पर है, कुएं से पानी खींच रही है स्नान करने के लिए, और ऊपर वाला कपड़ा नहीं है, नीचे वाला तो है, और इतने में 16 वर्ष का वो लड़का हो गया है बीरभद्र। उसको कोई एक खास जरूरत हुई मैया से, जानवा देवी से, तो वो अंदर महल में आ गया कुएं के पास में। अरे मैया मैया तू कहाँ है, मैया कहाँ है, कहते हुए जब कुएं के पास आया तो लड़का तो है बड़ा हो गया है, उसे भी लज्जा है, उनके वस्त्रक्षल इत्यादि खाली हैं, ऊपर से केवल नीचे से ये पहनी है, नीचे वाला ऊपर वाला तो कोई कपड़ा है नहीं, इसलिए बड़ी लज्जित थी, लज्जित थी। अब क्या करें, आधा बाल्टी आधी दूर तक आई है कुएं में, दोनों हाथ से अभी खींच रही हैं, इतने में दो हाथ और निकले, चार हाथ हो गए, दो हाथों से इधर में ढक लिया और दो हाथों से खींचने लगे। देखते ही एकदम दंडवत प्रणाम हो गए, भाई ये तो सचमुच में ये तो स्त्री महिला तो है नहीं, ये तो चतुर्भुज है, ये तो ये सचमुच में जो लोग कहते हैं ये वारुणी देवी जी है, रेवती जी, रेवती जी की भी ऐसी शक्ति, बलदेव जी कभी कभी द्वारका में चतुर्भुज भी हो सकते हैं, उनकी पत्नी भी हो सकती है, ये तो सत्ता लक्ष्मी की प्रणाम किया। फिर निकल कर चले आए, फिर जब उन्होंने स्नान स्नान किया तो उनके पास में आकर के बोले आज ही आपको हमको दीक्षा देनी पड़ेगी, तब उन्होंने अनुग्रह करके उनको दीक्षा हरिनाम और दीक्षा दी। ये जानव जी का चरित्र। उस समय वैष्णव समाज में जब नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जी नहीं रहे तो उस समय में बंगाल और ब्रज और उधर में जगन्नाथपुरी, तीन जगह तो हम वैष्णव के क्षेत्र हम लोगों के हैं, गौड़ीय वैष्णव के, सब लोग इनको अपना श्रेष्ठ व्यक्ति माने, वैष्णव जगत के सम्राट थे, उनके बिना आदेश का कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता था उस समय, जिसको जो कहती थी वो शिष्य के रूप में इनके आदेश का पालन करता। यहाँ तक कि एक व्यक्ति था बहुत सुंदर पाठक और अपने को बहुत भक्त समझता था, बहुत त्यागी वैरागी था, उसका नाम था रूप कविराज। एक दिन वो प्रवचन कर रहा था और ये हाथ में माला लेकर के हरे कृष्ण कर रही आंख बंद कर सुन रही। उसने कहा यदि भागवत की कथा हो उस समय माला करना और हरिनाम करना आंख बंद करके ये अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं समझा कि हमसे लाखों गुण ऊपर हैं, ईश्वरी हैं, नहीं समझा, उनको शासन करने की चेष्टा। और भी दो ऐसी बातें हुई जो रूप गोस्वामी के सिद्धांत को उलाट करके दूसरी तरफ में देखना चाह रहे, उनके सिद्धांत ठीक नहीं, हमारा सिद्धांत ठीक है। उन्होंने आदेश दिया उसकी और बातों को देख करके, ये वैष्णव समाज से इसका बहिष्कार होना चाहिए, मैं घोषणा करती हूँ कि ये वैष्णव समाज में नहीं, ये अतिबाढ़ी है। अतिबाढ़ी मैंने धर्मराज ने बहुत अपने को बड़ा समझता है किंतु है नीचा। बस सुनते ही वैष्णव समाज से उसका बहिष्कार कर दिया गया, उसको अब कोई पूछता नहीं था, ऐसे प्रतिभाशाली थे। जिस समय में नरोत्तम ठाकुर जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उनके कीर्तन पदावलिया में नरोत्तम ठाकुर जी जब वृंदावन से लौट करके घर गए तो उन्होंने ठाकुर जी की प्रतिष्ठा कराई, उसमें श्रीनिवास आचार्य आए और इनको भी बुलाया गया, ब्रज से पुरी धाम से अब मथुर गौर मंडल के जितने भी भक्त लोग थे सभी लोग वहां पर आए, कनिष्ठ मध्यम उत्तम सभी लोग आए। उस समय में श्रीनिवास जी जब भागवत का पाठ कर रहे हैं तो जिस समय में राष्ट्रस्थली का वर्णन करने लगे उस समय राष्ट्र वहां पर सब अपने आप प्रकट हो गया, जितने श्रोता थे उन लोगों ने देखा। जब भागवत समाप्त हो गया तो देखा जो कुछ नहीं, इसके बाद नरोत्तम ठाकुर ने कीर्तन आरंभ किया। उनकी पदावलियों में बहुत सुंदर सुंदर पद है, राधा कृष्ण प्राण मोह जुगल किशोर और राष्ट्र के भी पद है, जबकि उन्होंने उनका अपना सुर ताल लय मान शास्त्रीय संगीत करते थे। जब मृदंग बजने लगा और जब वो कीर्तन करने लगे नित्य करने लगे एकदम चैतन्य महाप्रभु अपने समस्त परिकरों के साथ में प्रकट हो गए, जो अप्रकट हो गए थे तब तक महाप्रभु के करीब करीब 250 वर्ष बाद वहां पर प्रकट हो गए कीर्तन विराट में। थोड़ी देर में राधा कृष्ण सभी वहां पर एकदम उपस्थित हो गए बदल करके, और रास जैसा स्थिति सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए। जब कीर्तन बंद कर दिया तो देखा इसे कुछ ऐसे ऐसे ये लोग थे गुणी, ऐसे ऐसे परम भक्त थे। उस समय ये गई, इनके चरण धोए अपने आप नरोत्तम ठाकुर जी ने, और पान किया सब भक्तों को दिया। तो बतलाइए जैसे ये कैसे होंगी, ये कितनी प्रभावशाली ये थी महिला होने से उसको ये कोई इंपॉर्टेंस इसका नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता हमारे संप्रदाय में, इसका भी विधान है कि उनको उचित आदर दिया जाए उसके भक्ति के तारतम्य से सबको जहां तक हो सके। तो उस समय में विग्रह जो प्रतिष्ठा हुई उसका सभापतित्व या अभिनायकत्व इनका था, सब लोग इनकी पूजा करके इनका आदर करके अब तक विग्रह प्रतिष्ठा या पाठ प्रवचन सब करते थे। उस समय जो विग्रह प्रतिष्ठा हुई 6 ठाकुर थे, राधा कृष्ण की, राज बिहारी, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, राधा मदन, गौरांग, गौर नित्यानंद, पल्लवी कांत, गोपीकांत, इस तरह से 6 विग्रहों की स्थापना। बहुत धूमधाम से मचा, भारतवर्ष का एक प्रधान क्षेत्र बना। मूर्ति जब स्थापित हुई तब एक प्रश्न आता है, क्या प्रश्न, ठाकुर जी की कोई मूर्ति है या नहीं? ठाकुर जी की मूर्ति माननी चाहिए या नहीं, उसे क्या होता है आइडोलेट्री, जिसको कहते हैं आइडल पूजा, भूत पूजा, मुसलमान लोग कहते हैं भूत पूजा, और कोई कहते हैं
आर्य समाज कहते हैं मूर्ति पूजा करते हैं,
मूर्ति पूजा बेकार की चीज है जिसको मोहम्मद गोरी ने तोड़ दिया, जिसकी सब लोग पूजा करते हैं,
इसे ये भगवान मानते हैं,
उसको ये भगवान उस पत्थर को मानते हैं। भारतवर्ष के सनातनी हिंदू के अतिरिक्त भगवान की मूर्ति को लोग नहीं मानते, विशेष करके 2 जातियां नहीं मानते, ईसाई धर्म वाले और दूसरा मुसलमान लोग नहीं। आजकल इन्हीं की संख्या अधिक है, हम लोग अभी जगत में विश्व में हम लोग अल्पसंख्यक वाले हिंदू रहे, और इसमें से भी कटता जा रहा, बौद्ध निकल रहे हैं, नीचे जाति वाले शेड्यूल कास्ट वाले धीरे धीरे निकल रहे हैं, राजनीतिक आर्य वाले ये लोग निकल रहे हैं, यहाँ तक कि बंगाल में जो रामकृष्ण मिशन वाले हैं वो लोग भी अपने को अब हिंदू नहीं करना चाहते हैं, उनको कुछ लाभ के लिए स्वार्थ के लिए वो लोग भी चाहते हैं कि हम अल्पसंख्यक रहें तो हमको कुछ सुविधाएं मिले। अब ये धीरे धीरे इन लोगों में भी विभाग और सब राजनीतिक लीडर लोग करा रहे हैं। तो हाँ, उन लोगों का कहना यह है भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, कोई आकार नहीं उनका है, किंतु हमारे सनातन धर्म में हम हिंदुओं के लिए ये मूर्ति पूजा एक रीढ़ के समान है, जैसे शरीर में ये रीढ़ होती है, प्राचीन काल से अब तक चलती आ रही है, अभी तक लोग कुछ कर नहीं सके, संख्या कुछ कमी है किंतु मानने वाले की कमी नहीं हो रही, अभी भी वैसे ही चल रही है, इसलिए बहुत से लोग बौखला जाते हैं। और इस पर हम साधारण रूप में एक शास्त्रीय विचार कर रहे हैं और लौकिक युक्तियों का भी विचार कर रहे हैं। उन लोगों का यह कहना है जिसकी मूर्ति मानी जाती है, यदि भगवान की मूर्ति मान ली जाए तो वो सर्वव्यापी नहीं हो सकते, समझ रहे हैं, यह सर्वव्यापी है उसका कोई आकार नहीं हो सकता, वो एक ही जगह में रहेगा, सर्वव्यापी नहीं हो सकता, इसलिए यदि भगवान का आकार माना जाता है तो उसको सर्वव्यापी नहीं माना जा सकता, किंतु शास्त्रों में और साधारण रूप में यह बात प्रचलित है और सत्य है कि भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी, तो यह मेल नहीं खाता है परस्पर सिद्धांत के रूप में। दूसरी बात, जिस चीज का आकार होता है उसको सुख और दुख सहना पड़ता है और उसकी मृत्यु भी होती है, जन्म भी होना है, जितने भी आकार। तो यदि भगवान का आकार माना जाता है तो उनकी जन्म मृत्यु मानना पड़ेगा और उनको सुख दुख होता है, दोनों, ये दोनों मानना पड़ेगा। किंतु ब्रह्म जो है, अल्लाह खुदा है, भगवान है, इनको यदि माना जाता है आकार है तो उनका भी जन्म और मृत्यु मानना पड़ेगा। किंतु उनका जन्म मृत्यु नहीं माना जाता, उनको सुख दुख से वो अतीत है, अमांग मनुष्य गोचर है, इसलिए उनका रूप नहीं होना चाहिए। ये उनकी प्रधान दो युक्तियां। अब हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में विचार करें, एक घंटा शायद हो गया है, मैं चाहता था विस्तृत रूप में इसकी व्याख्या। अब आज समूह ने मैं संक्षेप में दो एक बातें बतला रहा हूं। पहली बात, कुरान में एक एक वाक्य है, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। क्या मतलब? गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। जैसी उनकी मूर्ति है, इमेज है, उसी के समान ही मनुष्य को बनाया। यदि यह बात ठीक है तो अल्लाह उनका, गॉड का भी रूप है और ऐसा ही है। पहली बात तो ये, ईसाई लोगों को या तो उस वाक्य को निकाल करके फेंक देना चाहिए, अन्य तो कहा जाएगा कि बाइबल में इनका विश्वास नहीं है। दूसरी बात, मुसलमानों का पुराण ग्रंथ है, उसमें लिखा है इन्ना अल्लाह खलाका मैन सूरत ही। उच्चारण तो मेरा ठीक से नहीं हो रहा, ये लोग फारसी जानने वाले हैं, तभी ये है किसी न किसी। तो ये जो खुदा का अल्लाह है, उनकी जो जस्मानी जो शरीर है, उनका सूरत है, अपने सूरत के अनुसार में